अस्सलामुअलैकुम। आज जुमा है, फरवरी की 17 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के महकमे खारजा के एक आला अहदेदार ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर तैयार है। अमरीका के महकमे खारजा के कौंसलर डेरेक शोले की तरफ से इस आजम का इजहार एक ऐसे वक्त में किया गया है जब पाकिस्तान को एक तरफ दहशतगर्दी के इफरीत और दूसरी जानिब एक मुश्किल इक्तसादी सूरतेहाल का सामना है। महकमे खारजा के आला तरीन अहदेदारों में से एक कौंसलर डेरेक शोले ने 16 और 17 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरतारी, वजीर ममलुकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा, पाकिस्तान फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा असद मजीद से मुलाकात की। हालिया महीनों के दौरान पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला राबतों में इजाफा हुआ है और रवां हफ्ते पाकिस्तान और अमरीका के माबेन दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात में तआवुन को फरोग देने के लिए दरमियानी सतह के मुज़ाकरात भी वॉशिंगटन में मुनाकिद हुए हैं। अमरीकी सिफारतकार का पाकिस्तान का यह दूसरा दौरा है। सदर पाकिस्तान डॉ आरिफ अलवी ने मुल्क में आम इंतखाबात के मामले पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 20 फरवरी को मुलाकात की दावत दी है। एलानी में कहा गया है कि सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान कमिश्नर से मुशावरत के बाद करेंगे। सदर पाकिस्तान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल सदर पाकिस्तान के एक हफ्ते कबल भेजे गए पहले खत का जवाब नहीं दिया है। उस खत के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की थी और इंतखाबात के लिए पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की दस्तियाबी के हवाले से भी सूरत हाल का जायजा लिया था। जुमेरात को एक केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। अफगान सहाफियों की हिमायत करने वाली तंजीमों ने तालिबान से मुतालबा किया है कि कंधार में 3 रोज कबल गिरफ्तार किए गए अफगान सहाफी को रिहा किया जाए। तुलू न्यूज के लिए काम करने वाले मकामी अफगान सहाफी मोहम्मद यार मजरूह को बुध के रोज नामालूम इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया था। इत्तलात के मुताबिक उसे कंधार में तालिबान के इंटेलिजेंस के दफ्तर में तलब किया गया और बाद में जेल भेज दिया गया। तालिबान ने गुज़श्ता 1.5 साल से मीडिया तंजीमों पर पाबंदियां जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से कई मीडिया इदारे अपनी कार्रवाइयां बंद करने पर मजबूर हुए हैं। चीन और ईरान के सदूर ने तालिबान से मुतालबा किया है कि खवातीन पर से काम करने और तालीम हासिल करने की पाबंदियां खत्म की जाएं। यह मुतालबा जुमेरात को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के बीजिंग के 2 रोजा दौरे के अख्तिताम पर जारी होने वाले मुश्तरका बयान में किया गया है। बयान में अफगान हुक्मरानों से एक जामे हुकूमत बनाने का मुतालबा किया गया है, जिसमें तमाम नस्ली ग्रोह और सियासी ग्रोह शरीक हों और खवातीन, नस्ली अकलियतों और दीगर मजाहब के खिलाफ तमाम इम्तियाजी इकदाम को मनसूख कर दिया जाए। बयान में अमरीका और उसके नेटो इत्तेहादियों को अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया गया। अफगानिस्तान के लिए आला अमरीकी सिफारतकार ने जुमेरात को उन ट्वीट्स पर माजरत कर ली है जिसमें उन्होंने तजवीज किया था कि जद्दोजहद करने वाली अफगान खवातीन को अफ्रीकी अमरीकी तारीख और सकाफत, खास तौर पर ब्लैक गर्ल मैजिक सोशल मीडिया मूवमेंट से तहरीक हासिल करनी चाहिए। अमरीकी एलची कैरन डेकर ने ट्वीट किया कि हफ्ते के शुरू में भेजी जाने वाली उनकी मुतअद्दिद पोस्ट्स उनके बेहतरीन इरादों के बावजूद मुनासिब मालूम नहीं होती, जिसके लिए वो माजरत चाहती हैं। भारत के टैक्स हुकाम ने बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी के दफातर में 3 रोज तक जारी रहने वाली तलाशी खत्म कर दी है। टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक तलाशी के दौरान बाज डिजिटल डिवाइसेस के डेटा की नकल तैयार की गई। बीबीसी ने अपने दफातर में टैक्स हुकाम की तलाशी खत्म होने की तस्दीक करते हुए एक बयान में कहा है कि मुलाजमीन ने मामूल के मुताबिक काम का आगाज कर दिया है। البتہ بیان میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کاروائی سے پیدا ہونے والی صورتحال کو پریشان کن اور خلل کا باعث قرار دیا۔ بھارت میں مدیروں کی تنظیم ایڈیٹرز گلڈ، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس، صحافی تنظیموں اور بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے بھی بی بی سی میں ٹیکس حکام کی کاروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن چینی صدر شی جن پنگ سے اس مشتبہ غبارے کے بارے میں بات کریں گے جسے انہوں نے اس ماہ گرانے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات میں مزید تناؤ پیدا ہو گیا۔ صدر نے کہا کہ مجھے توقع ہے کہ صدر شی کے ساتھ اس بارے میں بات چیت ہوگی اور مجھے امید ہے کہ ہم اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے، لیکن میں اس غبارے کو مار گرائے جانے پر کوئی معذرت نہیں کروں گا۔ صدر بائیڈن نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب مار گرائے جانے والے مشتبہ چینی غبارے کی جانچ پرکھ کی جا رہی ہے اور گرائے گئے باقی تین نامعلوم آبجیکٹس کا ملبہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ارکان کا خیال ہے کہ گرائی گئی باقی تین اشیاء کا تعلق غالباً پرائیویٹ کمپنیوں یا تفریحی اداروں یا موسم کا مطالعہ کرنے والے تحقیقی اداروں یا دیگر سائنسی شعبوں سے تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ یی بن نے ایک نیوز بریفنگ میں بتایا کہ اگر امریکہ تعلقات میں بہتری چاہتا ہے تو چین پر الزامات لگانا بند کرے، تبھی اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ تاہم ترجمان نے صدر بائیڈن کی جانب سے کال کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کرنے سے گریز کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جمعے کو یورپ کے اپنے دورے کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں وہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔ وہ ترکی اور یونان بھی جائیں گے۔ تین روزہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس جمعے کو شروع ہو رہی ہے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس، جرمن چانسلر اولف شولز، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، نیٹو کے سربراہ یانس اسٹالٹن برگ اور اعلی چینی سفارتکار وانگ یی سالانہ اجتماع میں شریک ہوں گے۔ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ بلنکن نے اس موقع پر چینی خارجہ پالیسی کے اعلی عہدیدار وانگ یی سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی ملاقات طے نہیں ہے۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ میونخ میں بلنکن میٹنگوں کے ایک سلسلے میں شرکت کریں گے، جن میں یوکرین کے لیے مسلسل حمایت اور ترکی اور شامی عوام کے لیے مدد پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بلنکن کا ترکی کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب 7.8 شدت کے زلزلے نے دونوں ملکوں میں شدید نقصان پہنچایا ہے اور امدادی کارکن ملبے تلے پھنسے لوگوں کو نکالنے کی تگ و دو کر رہے ہیں۔ جنوب مشرقی ترکی اور شمالی شام میں زلزلے سے 41,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ کانفرنس یوکرین پر روس کے حملے کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہی ہے اور گزشتہ سال کے بار بار کے بیانات میں امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی بار بار یہ انتباہ کر رہے تھے کہ جنگ قریب آ رہی ہے۔ محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سفارتی بات چیت کے لیے سنجیدہ ہیں، لیکن امریکہ روس کی معیشت پر دباؤ ڈالتا رہے گا تاکہ پوٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے پر مجبور کیا جا سکے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سالانہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے شرکا نے گزشتہ برس روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے درخواست کی تھی کہ وہ یوکرین پر حملہ نہ کریں۔ 24 فروری کو حملے کا ایک سال مکمل ہونے سے چند دن پہلے یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ زیلنسکی نے اپنے رات کے خطاب میں کہا کہ جمعرات کو 101 افراد کو روس کی قید سے رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی سرزمین کو آزاد کرانا ہماری ترجیح ہے، جس کی ہم محتاط تیاری کر رہے ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع نے یوکرین کے بارے میں اپنی روزانہ کی انٹیلیجنس اطلاعات میں کہا ہے کہ روسی وزارت دفاع کو حملے کے آغاز سے لے کر اب تک 1,75,000 سے 2,00,000 تک اپنے اہلکاروں کی ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں تقریباً 40,000 سے 60,000 افراد اعلی سطح کے اہلکار تھے۔ اس کے علاوہ اپڈیٹ میں کہا گیا ہے कि वैगनर ग्रुप के सजा याफ्ता भर्ती अमले में हलाकतों की शरह मुमकिन तौर पर 50% तक रही है। अक़वामे मुत्तहिदा की पनागुज़ीन एजेंसी की एक अहलकार ने बताया है कि कम अज़ कम 69 रोहिंग्या पनागुज़ीन जुमेरात के रोज इंडोनेशिया के मगरबी साहिल पर लकड़ी की एक कश्ती से उतरे, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की थी। UNHCR की अहलकार ऑक्टीना हफ्तनी ने के मुताबिक कश्ती इंडोनेशिया के मगरबी सूबे आचे के साहिल पर पहुंची। एक मुसाफिर ने बताया कि जहाज में सवार कुछ अफराद सफर के दौरान हलाक हो गए। नवंबर के बाद से इंडोनेशिया पहुंचने वाली ये छठी रोहिंग्या कश्ती थी। सन 2017 में हमसाय मुल्क म्यांमार में जुल्म सितम से फरार होने के बाद एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 मिलियन रोहिंग्या बांग्लादेश में पनागुज़ीन कैंपों में रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई वीडियोज में ईरान के कई शहरों में जुमे को मुजाहिरीन को मार्च करते दिखाया गया है। ईरान में इंसानी हकूक के कारकुनों के ग्रुप ने कहा कि उनका मकसद ईरान के दारुलहुकूमत तेहरान और अराक इस्फहान के शहरों में मुजाहरे दिखाना है। ताहम इन वीडियोज की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान ने मुल्क में गुज़श्ता मुजाहरों से मुतालिक इल्जामात पर 2 अफराद को फांसी दी थी। ये मुजाहरे उस वाक़े के 40 रोज मुकम्मल होने पर किए जा रहे हैं। सितंबर में 22 साल कुर्द ईरानी खातून महसा अमीनी को जवाबित के खिलाफ लिबास पहनने पर हिरासत में लिया गया था और पूरे सिलासत में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद मुजाहरे शुरू हो गए। वीडियोज में मुजाहरीन फारसी में राबर आला के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से मुजाहरों का फौरी तौर पर कोई एतराफ नहीं किया गया। इस्लामी जमहूरिया ईरान का कहना है कि ये एहतजाज गैर मुल्की साजिश का नतीजा है, लेकिन उसने कोई सबूत पेश नहीं किया। मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरों के बाद अमरीकी डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की कदर में नई निचली सतह पर गिरावट देखी गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने अपने मुतनाज़िया बयान पर होने वाली तनकीद के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। चेतन शर्मा ने मकामी टीवी जी न्यूज के लिए रिकॉर्ड की गई वीडियो में दावे किए थे, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा था कि वो सिलेक्शन कमेटी के सरबराह नहीं रह सकेंगे। चेतन शर्मा की यह वीडियो मंगल को मंजर आम पर आई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बाज भारतीय क्रिकेटर्स 100% फिट रहने के लिए ममनुआ इंजेक्शन लगवाते हैं। इस बयान पर साबिक भारतीय क्रिकेटर्स ने शदीद नाराजगी का इजहार किया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।